सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
ओम शांति। आज हमारे बीच आदरणीय मोहन भाई जी स्पेशल हम सबको अपनी मीठी मीठी रूरिहान से भरपूर करने आई हैं। एक हाथ की ताली से हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता मैंने सदा ही देखी है, जैसे बाबा हमेशा साकार मुरलियों में कहते थे, बच्चों के अंदर नई नई सेवा का उमंग और उत्साह होना चाहिए। तो शुरू से लेकर के नई नई चित्र बनवाना, सेवा की नई नई रूपरेखा तैयार करना और सेवा में नवीनताएं लाना, ये एक आपकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी रही है। दूसरी जो विशेषता हमेशा ही मैंने अनुभव की है वो ये है कि जिन्हों से भी आप मिलते हैं उसे हमेशा ही वो प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ने के लिए उमंग और उत्साह भरते हैं और हर संभव अपॉर्चुनिटीज देकर के दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को लिफ्ट करना, ये जैसे आपका एक बहुत बड़ा शौक है, हॉबी है। तो आज एक ऐसी विरल आत्मा, एक ऐसी विशेष आत्मा हम सबके बीच में है जिन्होंने हर प्रकार के बैलेंस को संभाल करके अपने आध्यात्मिक जीवन को एक आदर्श बनाया है। आज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि पुरुषार्थी जीवन में दो चीजें हमारे जमा के खाते को स्ट्रांग बनने नहीं देती है, एक है लीकेज और दूसरा है वेस्टेज। तो कहाँ कहाँ लीकेज है और कहाँ कहाँ वेस्टेज है और इन दोनों चीजों को हम कैसे खत्म करें ताकि थोड़े समय में हम अपना जमा का खाता बहुत स्ट्रांग बना ले, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आपसे मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ आदरणीय मोहन भाई।
ओम शांति। हम सब मिलकर के एक बार उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हमने सुना है यज्ञ के प्रारंभ में, साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सारे ब्रह्मावत्स बोला करते थे। तब तो केवल ओम की ही ध्वनि होती थी, अभी आज हम ओम के साथ साथ शांति की भी वैसी ही ध्वनि करेंगे। इसके लिए पहले अंदर एक गहरा श्वास खींच करके और फिर उस श्वास को निकालते जाएंगे और फिर उस श्वास के साथ साथ ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरे श्वास के साथ शांति की। ओ आज की मुरली तो हम सब ने सुनी और मुरली के ऊपर कुछ मनन चिंतन भी अवश्य किया होगा, क्योंकि बाबा का आज की मुरली के ऊपर विशेष किस बात पर जोर था, क्या था? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, एक ये बात थी। और इसके साथ साथ आज का जो अभी बहन जी बता रहे थे, लीकेज के कई जगह होती हैं, तो पहली जगह तो यही बाबा ने बता दी कौन सी। जब कोई भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं या उसको हम कान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सुनाने वाला भी बड़ी रुचि से सुना रहा होता है, तो क्या होता है, किस खजाने का लीकेज होना शुरू हो जाता है। कौन सा खजाना? बात पहले तो ये कि खजाने कई हैं, बाबा ने बहुत खजाने बताए हैं, लेकिन किस किस खजाने को विशेष सहेज कर रखने की जरूरत है, और वो खजाना अगर हमारा इंटैक्ट रहता है, लीकेज नहीं होता, तो हम फिर विजयी रतन बन जाते हैं। तो कौन से खजाने बाबा ने बताए हैं? सबसे ज्यादा बाबा ने कौन से दो खजाने बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट? समय और संघ। और साथ साथ कौन से खजाने हैं? श्वास का भी है। श्वास का कनेक्शन तो समय के साथ भी है, गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना, ज्ञान का, पवित्रता का, और जो दुनिया वाले भी खजाना बहुत जरूरी समझते हैं, कौन सा? स्थूल खजाना। क्योंकि बाबा ने कहा है, जो बच्चा होता है वो बाप के खजाने को संभालता भी है, बढ़ाता भी है। और बाबा ने भी कहा है, आप ब्राह्मणों का ये जो स्थूल खजाना भी ये आपका नहीं है, किसका है? बाबा का है। इसलिए उसको ट्रस्टी होकर संभालना भी है और उस खजाने को भी बढ़ाते भी रहना है। तो ये सब जो खजाने हैं, समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, स्थूल खजाना आदि आदि, इन सब खजाने को यदि बढ़ाते रहेंगे और लीकेज नहीं होने देंगे, तो क्या होगा? संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। जैसे कौन अभी तक कर्मातीत बना है? साकार ब्रह्मा बाबा। अभी तक एक ही आत्मा है जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रही है। और कितने समय में बाबा संपूर्ण बन गए? 33 वर्ष में। देखो कितने कम समय में, उल्टी सीढ़ी भी चढ़ा हुआ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो घर गृहस्थी वाला था, परिवार वाला, तो उल्टी सीढ़ी यानी विकार का अनुभव किया हुआ, नौकरी धंधे का, पैसा कमाने का, सब दुनिया भी पूरा, लेकिन फिर भी बाबा एकदम, जब से बाबा को ज्ञान हुआ, 33 वर्ष में संपूर्ण बन गए। और आज तो बहुत हैं, 33 से दुगने साल, मुझे भी 50 साल से ज्यादा हो गए, बहुत हैं, सब 60, 70, 80, 80 साल हमारे यज्ञ को हो गए। और इस रीति से हम सब अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और विश्वास भी है बाबा जरूर बना भी देगा, लेकिन 33 वर्ष में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, तो जरूर ब्रह्मा बाबा ने भी इस बात का विशेष ख्याल किया होगा कि कोई भी खजाना लीक ना हो, वेस्ट ना जाए। क्योंकि जीवन में जब पहले बहुत सोच समझ के कोई कर्म किया जाता है, उस कर्म से सफलता होती है, खुशी होती है, और जब कोई कर्म सोच समझ के नहीं होता, आवेश में होता है, तो क्या होता है? पश्चाताप होता है। और पश्चाताप में फिर क्या होता है, बहुत समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसीलिए बाबा के साथ साथ आज हम ये देखेंगे कि ये खजाने जो हैं, इन खजानों को हम कैसे इंटैक्ट रखें। केवल रखे ही नहीं, जो खजानों को बढ़ाते भी चले, और जितना जितना खजानों को बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा, बाबा क्या चाहता है, हम बच्चे कैसे बच्चे बन जाएं, खुद भी हम बाप समान वरदानी मूरत बन जाए। वरदान कौन दे सकता है, वैसे भी दान, वरदान में भी दान, दान कौन देता है, खुद भरपूर होगा, अपने पास होगा तभी तो दान दे सकेगा। इसी रीति से वरदान देने के लिए कई भरपूर भी होते हैं फिर भी दान नहीं देते, क्यों, क्योंकि दिल उनका उतना फिराक नहीं होता है, बड़ा दिल नहीं होता है। तो बाबा हमें चाहता है वरदानी मूरत भी बने, फिराक दिल, बड़े दिल वाले भी बने, सबको वरदान देते चले। भगवान का प्रसिद्ध है ना, भगवान भक्ति मार्ग में, सबने भक्ति की होगी थोड़ी बहुत, सुना है पढ़ा है, जब भक्ति में कोई भी इच्छा होती है, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति साधना करते हैं, भगवान से वरदान की इच्छा रखते हैं, और अगर बहुत अच्छी भक्ति है, सच्चे दिल से की है, भगवान साक्षात्कार भी करते हैं, और भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, जैसा कहानियों में पढ़ा सुना है, भगवान कहते हैं वरदान मांग। तो जब भक्त भगवान के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो भगवान के मुंह से क्या निकलता है, बस एक ही शब्द, तथास्तु, यानी जो वरदान मांगा है उसमें कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि भाई तुमने मोटर कार मांगी है तो ये मत मांगो, स्कूटर ही मांग लो। ऐसा होता है कभी, भाई मुझे इतने करोड़ चाहिए, इतने करोड़ नहीं भाई, इतना लाख से ही संतुष्ट हो जाओ, नहीं। जो भी इच्छा होती है वो, क्योंकि भगवान के खजाने भरपूर है, इस कारण से बस वो इच्छा पूर्ण। तो हमको ऐसा वरदानी मूरत बनना है, खजाने बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के सारे खजाने भरपूर होंगे, तो विश्व की किसी भी आत्मा को हम वरदान दे सकेंगे, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा भगवान, अब बाबा हम बच्चों से चाहता है। तो ऐसे हम कैसे भरपूर बनते जाएं, ये अब हमको देखना है। अपने अंदर हम देखते चले हैं कैसे हम लोग भरपूर बने, पहली बात। रोज हम सब लोग मुरली सुनते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, वही हमारा आधार है सुबह से लेकर रात तक का। तो मुरली को जब सुने तो उसका स्वरूप बन करके मुरली को सुने। उसका भाव क्या है स्वरूप बन के सुनने का, मुरली जब सुनी जाती है ना, बाबा जो बात कह रहा है हम उसको उसी अपने मन को उसी स्तर पर ले जाए। बाबा मानो सतयुगी दुनिया की बात कह रहा है, सतयुगी दुनिया में ये सुख होगा, प्रकृति बहुत दासी होगी आदि आदि, तो बस ऐसे लक्ष्मी नारायण होंगे, ऐसी दुनिया होगी, अथा धन होगा। हम अपने को उस दुनिया में ले जाए और उस मानसिक रूप से सुने जैसे कि इस समय मैं खुद विश्व महाराजन महारानी हूँ, प्रकृति भी दासी है, सोने चांदी के महल हैं, और मन हमारा उस स्थिति में स्थित हो जाए। इन नेत्रों के अलावा मन रूपी नेत्र से हम उस दृश्य का चित्रण करें। कभी बाबा सूक्ष्म वतन का वर्णन कर रहा है, परम धाम का वर्णन कर रहा है, हम परम धाम में चले जाए, अपने को समझे हम बाबा के साथ हैं। कभी बाबा सेवा की बात कर रहा है, विश्व की आत्माओं को संदेश देना है, हम अपने को वही रूप में इमेजिन करें कि मैं बाबा के साथ साथ विश्व भ्रमण पर निकली हुई आत्मा हूँ, और नीचे सृष्टि के ऊपर अनेक अनेक आत्माएं हैं, मैं उन आत्माओं को शक्ति का शांति का वरदान दे रही हूँ, उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। बाबा ने कहा है हाँ, अमृत वेले भी हम लोग योग करते हैं शाम को भी, तो बाबा ने कहा नुमा शाम का जो समय होता है ना, कैसा समय होता है नुमा शाम का जो समय होता है, जो भी हो, तो उस समय आपको भ्रमण पर निकला है। अमृत वेले जब वरदानी, जब अमृत वेले योग करते हैं, वो अपने को शक्ति संपन्न करने का योग है, अपने में शक्तियां भरने का। और शाम का जो योग है वो उन शक्तियों को विश्व की आत्माओं को बांटने का समय, 6:30 से 7:30 के बीच में। तो इसीलिए जब लेंगे, लेना और देना, तभी वो लगातार प्रक्रिया होती रहती है। पानी भी है, चलता रहता है, शुद्ध रहता है गंगा। जहां रुक गया, कीड़े मकोड़े होते हैं, बदबू हो जाती है, खराब हो जाता है। कोई भी चीज, जो लक्ष्मी को भी कहते हैं लक्ष्मी चंचल, एक जगह रुकती नहीं। तो ये भी खजाना है ना, तो जो खजाने बाप से लेते रहें, उन खजानों को रोज देते रहें। और देना तो सहज है, लेना, इकट्ठा करना, वो उसमें समय और शक्ति और एकाग्रता चाहिए। इसीलिए रोज स्वचिंतन करें। एक तो जब मुरली सुने, स्वरूप बन के सुने, फिर मुरली सुनने के बाद कुछ समय निकाल के उसका स्वचिंतन भी करें, विचार सागर मंथन करें। मंथन होता है, दूध का मंथन होता है, क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। वही शक्ति का साधन है, शारीरिक शक्ति का। ऐसे विचार सागर मंथन, विचार, किसी विचारक ने कहा है, विचार माने वी चार, चार वी ये चिन्ह किस में दिखाया जाता है? विक्ट्री, विजय का सूचक है हमेशा लौकिक दुनिया में भी। तो हम सब भी आत्माएं विजयी आत्मा है, और वो कब होंगी? जब चार प्रकार के जो विचार है ना, वी चार। तो ये वी चार का मतलब, एक है वी रिप्रेजेंट करता है, वी माने विद्या यानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान भी जो सुनते हैं, विचार करते हैं, उसको सुने समझें, और फिर विद्या जो ज्ञान है, बाबा ने बताया है, उस ज्ञान को क्या करें, जब धारण करेंगे तो किस स्वरूप से हमारा प्रदर्शन होगा? विद्या के लिए कहा, विद्या विनय विभूषते, विद्या जो है ना विनय के द्वारा। हमें अपनी विद्या का, किसी में हरेक में कोई गुण होता है, शक्ति होती है, धन होता है, रूप होता है, यौवन होता है, सत्ता होती है, उसका अभिमान आ जाता है, और अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो विद्या और विद्या के साथ साथ विनय, नम्रता, ये दूसरी चीज है। वी से विद्या, वी से ही विनय, यानी जीवन के अंदर नम्रता, कोई अहंकार की भावना ना हो। जब भी कोई चीज हम ना एक्सपेक्टेशन करते हैं तो क्या होता है, किसी से भी कोई भी अपेक्षा की जाती है ना, और वो अपेक्षा अगर पूर्ण नहीं होती है, मैंने मानो कोई एक्सपेक्टेशन रखी किसी से कि ये भाई ऐसा करेगा, ये सर वो नहीं करा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अपेक्षा, तो अपेक्षा पूर्ण न होने से मुझे दुख होता है, और अपेक्षा से ही लगता दूसरा शब्द है उपेक्षा। किसी की हम उपेक्षा कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनी, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, उपेक्षा करी, उस उपेक्षा से दूसरे को दुख। तो जीवन में इन दो शब्दों से हम बचें, अपेक्षा और उपेक्षा। तो जितना जितना अपेक्षा और उपेक्षा से बचते रहेंगे, तो जीवन के अंदर विनय, नम्रता। देखो बाबा कितने महान थे, मुझे तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, लगभग 8 साल तक, 6-7 साल 1961-62 में ज्ञान में आए और 69 जब तक बाबा ने शरीर छोड़ा, अंतिम दो दिन भी हम यहीं थे 17 और 18 जनवरी को। तो इतने महान बाबा, पूरे यज्ञ के मालिक रक्षक, लेकिन कितनी नम्रता थी बाबा के अंदर, कोई भी प्रकार का अहम भाव नहीं, अहंकार नहीं। मुझे याद है एक बार जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उस समय कुछ छुट्टी हुई थी तो हम यहाँ आ गए थे, 1963-64-65 की बात है। तो बाहर दोपहर को, तब तो आराम की आदत नहीं थी, यंग थे, 18-19 साल के थे, और उस समय बाहर एक सन्यासियों का ग्रुप जा रहा था। तो सन्यासियों के ग्रुप ने हमारा बोर्ड वगैरह देखा तो पहरे पर, तब तो बहने हुआ करती थी, एक बूढ़ी दादी थी, तो वो थी, तो उन्होंने, उसने आके कहा कि हमें आपके गुरु जी से मिलना है। तो बहन ने समझाने का कोशिश किया, हमारा गुरु तो निराकार शिव परमात्मा है। वो कहता है नहीं, ये ब्रह्मा बाबा, इनसे मिलना है, दादा लेखराज से। तो बहन ने कहा ठीक है, मिलिएगा, अभी तो दोपहर का भाई 3 बजा है, 3:30, आप 1-2 घंटे रुक जाइए, शाम को या तो 5 बजे के बाद मिलिएगा या कल आके मिल लीजिए। तो बहुत नम्रता से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो आज ही मिलना है और आज मिलके जाना है, हमें जाना भी है, हमें अभी मिलना है। मैंने समझाने की कोशिश करी, नहीं समझे, तो बाबा को आके बताया। तो बाबा वो अभी ही मिलना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ले आओ, बाबा का तो कोई आराम का ना कुछ, वो ही बाबा को नहीं होता था। लाके उसने हिस्ट्री हॉल में बैठा दिया उन्हें, थोड़ी देर के बाद बाबा भी आ गए, कोई भी आराम भी बाबा ने नहीं किया था। बस आके बाबा ने कहा, वो लोग वहां नीचे बैठे हुए थे, तो बाबा ने आके देखा, अरे बच्चे यहाँ नीचे क्यों बैठे हो, आओ आओ ऊपर संदली पड़ी है, इन पर आकर बैठो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो, क्योंकि आश्रम कोई होता है तो गुरु की जो गद्दी होती है वो ही बैठता, बाकी जो जाते हैं दर्शन के लिए है वो नीचे अलग बैठते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप लोग तो कितने महान हो, बाल ब्रह्मचारी हो, और ये तो ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कहा, देखो ये था, ये तो घर गृहस्थी वाला था और पूरा दुनिया का व्यापार और नौकरी धंधा ये सब किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने तो भारत को थामा है, नहीं तो आज भारत की और क्या दशा होती, अपनी पवित्रता के बल से, इसने आप आओ यहाँ पर बैठो। तो फिर भी वो हिचकने लगे, नहीं नहीं वो आप, तो बाबा ने बड़े प्रेम से उठा करके, नहीं नहीं बच्चे आओ, प्रेम से उसका हाथ पकड़ के जो उनका मुख्य था उठा दिया, उसे लाके ऊपर संधि पर बिठाया और बाबा सामने बैठ गए। देखो कितनी नम्रता, कितनी महानता। कोई भी ऐसा होगा कोई गुरु गोसाई दुनिया में जो अपने ही आश्रम में अपनी गद्दी छोड़ के दूसरे को बैठाए? कोई नहीं होता, लेकिन यही नम्रता ने उनको बिल्कुल जैसे अंदर तक घायल कर दिया। बाबा ने फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का हालचा पानी वानी पूछ करके उन्होंने पिया, फिर बाबा ने कहा बच्चे कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा वो एक दूसरे को देखे, दूसरा सन्यासी तीसरे को देखे, क्योंकि बाबा ने अपने प्रेम से नम्रता से उन्हें बिल्कुल घायल कर दिया था। तो फिर एक उनमें से बाद में बोला कि हम तो इसलिए आए हैं, हमने सुना है कि आप जो ज्ञान सुनाते हो शास्त्रों के विपरीत है, कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, आदि आदि, ये सब शास्त्रों से उल्टा ज्ञान है, हम तो इसीलिए आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बड़े उन्होंने भी नम्रता से बोलना शुरू कर दिया, जो इतने अहम से भर करके आए थे बाबा के व्यवहार से जैसे बिल्कुल घायल हो गए। तो बाबा ने बताया देखो बच्चे, ये भी शास्त्र पढ़ता था, ये भी समझता था, लेकिन हम जिंदगी भर पढ़ते रहे, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, क्या कभी काम विकार को जीता, क्रोध को जीतने का प्रयास किया? नहीं, वो नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ये पढ़ते ही थे, जीवन में कभी धारण नहीं किया, और अभी तो ये बाबा ज्ञान नहीं सुनाता, ये तो खुद ही विकारी था, ये तो शिव बाबा आके ज्ञान सुना देता है इसके द्वारा, और ये तो वो ज्ञान है। बस थोड़ा ही बाबा ने उस स्थिति में स्थित रह के सुनाया, उन लोगों पर बहुत एकदम असर हुआ कि हाँ बाबा ठीक है, कह के नमस्कार करके चरण स्पर्श करके वो चले गए। तो देखो ये अपनी स्वस्थिति के द्वारा, बाबा ने अपनी स्वस्थिति इतनी मजबूत बना ली थी कि हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। तो जो ऐसी परिस्थिति आए, शास्त्रार्थ करने आए, झगड़ा करने आए, फिर भी बाबा ने अपनी स्वस्थिति से ना उनको इतना घायल कर दिया। तो इसीलिए एक आवश्यकता है स्वचिंतन, मुरली ऐसे सुने, स्वचिंतन करें और जो विचार सागर मंथन करें ज्ञान का, जितना मंथन करेंगे उतना जो उसमें से शक्ति मक्खन निकलेगा उसके आधार पर किसी को भी समझाएंगे तो उस पर असर पड़ेगा तुरंत। ज्ञान हम सब लोग भी कहते हैं, लेकिन जितना हरेक के ऊपर असर पड़ जाए पूरा का पूरा उतना नहीं होता। तो एक ये बात है। तो विद्या, विनय, एक है तीसरा विवेक, कॉमन सेंस, ये जो ज्ञान है ये मनुष्य का विवेक जागृत करता है। आज सुबह भी ज्ञान सरोवर में एक लेक्चर कर रहे थे, तो उसमें जीवन जीने की कला उसके ऊपर कुछ लेक्चर चल रहा था, तो उसमें एक कहानी हमने सुनाई, वो भी दो मिनट में आपको सुनाते हैं कि भाई चार मित्र थे। बचपन में शायद आपने भी कोई कहानी सुनी हो इस प्रकार की, चार मित्र थे, गांव में रहते थे, उस गांव में आगे बढ़ने के बहुत साधन नहीं थे, तो उन चारों ने सोचा कि कहीं बाहर जाके कोई विद्या सीखनी चाहिए, कोई ट्रेड सीखना चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। तो वो जो थे चारों, उन्होंने डिसाइड किया चलो हम चार दिशाओं में जाते हैं अलग अलग, और फिर एक साल बाद इसी जगह पर इस दिन इतने बजे हम लोग मिलेंगे। चले गए, उसके बाद चलो हम सब लोग पहले बाबा को याद करें। तो बात चल रही थी चार मित्रों की, तो निर्धारित समय पर वो मिले, आपस में बहुत खुशी हुई। चलते जा रहे थे गांव के पगडंडी पर, रास्ते पर, तो चलते चलते उन्हें कुछ हड्डी दिखाई दी। एक ने कहा कि अरे ये हड्डियां दिखती हैं, किसकी हैं हड्डियां, किसी जानवर की लगती हैं, चलो मैंने ऐसी विद्या सीखी है मैं इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ किस जानवर की। तो उसने कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह किए, वो हड्डियां जुड़ गई, पुराने जमाने की कहानी है। फिर दूसरे ने कहा मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं इसमें खून और मांस वगैरह वो संचार कर सकता हूँ। उसने वो प्रयोग किया, देखा एक शेर का सा रूप हो गया था। तीसरे ने कहा मैं इसमें प्राणों का संचार कर सकता हूँ, वो भी करने को तैयार हुआ। तो तब तक चौथे ने कहा अरे भाई तुम क्या करने जा रहे हो, जरा सोचो तो सही, अगर ये शेर जीवंत हो गया तो क्या होगा। उसने कहा भाई इन दो ने विद्या अपनी टेस्ट कर ली है, अब मैं भी अपनी विद्या को टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है वो भले टेस्ट करो, लेकिन सोचो क्या परिणाम होगा। लेकिन वो तो अपने उस नशे में था। तो चौथे ने कहा अच्छा ठीक है तुम टेस्ट करना हो तो करो, मैं तो थोड़ा दूर जाता हूँ। वो थोड़ा दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ के देखने लगा। तीसरे ने भी कुछ मंत्रोच्चारण किया, शेर जीवित हो उठा। क्या किया होगा उसने, कहानी है सबने सुनी है। तो तीसरा जो बात थी, विद्या, विनय और विवेक, ये जो ज्ञान है हमेशा हमारा, ये हमारा जीवन का विवेक जागृत करता है। सही क्या है, गलत क्या है, सही समय पर सही चीज की टचिंग होना, ये जीवन में बहुत आवश्यक है। और चौथा है विज्ञान। विज्ञान माने बाबा क्या कहता है, ज्ञान विज्ञान, अर्थात ज्ञान और योग। तो योग के द्वारा एकाग्रता का जागरण होता है और एकाग्रता तो सफलता की कुंजी है और इसी कारण बाबा ने कहा है वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। तो उस रीति से ये एक जीवन में विचार सागर मंथन, इसको अपना प्रतिदिन का कुछ नियम जरूर बना लेना चाहिए, 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट, लेकिन जो बाबा ने कहा उनमें से 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेके उसकी गहराई में जाएं। ये क्या पॉइंट है, इसके पीछे बाबा का क्या रहस्य है, इससे जीवन के अंदर क्या लाभ होगा, इसको अगर और अप्लाई किया जाए तो दूसरों की सेवा कैसे हो सकती है, उस रीति से उस पॉइंट को सोचें। तो ये विचार सागर मंथन हो गया और ये बाबा ने जो बताया है, तो मनन चिंतन विचार सागर मंथन और अभ्यास ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने कहा है अंत में क्या काम आएगा। बाबा ने क्या तैयारी रखनी है ना, किस किस चीज की तैयारी रखनी है, कौन सा पेपर आ सकता है। बाबा ने 3 पेपर बताए हैं ना, कौन सा, एक अचानक, एवर रेडी, हाँ बहुत काल। अचानक और एवर रेडी तो हमारे हाथ, अचानक तो हमारे हाथ में नहीं है कोई पेपर आए, एवर रेडी होना अपने हाथ में है, पर बहुत काल का अभ्यास, जितना अभ्यास होगा उतना जीवन में सफलता होगी। बचपन से देखो हर चीज का अभ्यास करते आए हैं आप, माताएं भी जब पहले छोटे थे घर में आपको माँ ने रोटी बनाना सिखाया होगा तो पहली बारी में क्या गोल रोटी बन गई, नहीं, चिपक भी गई होगी चकले पर, गोल भी नहीं बनी, लेकिन अभ्यास करते करते, अभी तो बात भी करते रहो बनाते भी रहो तो भी गोल होती है, कोई भी चीज का, साइकिल चलाने का, स्कूटर का, कोई भी अभ्यास। तो ये बहुत काल का अभ्यास ये अंत समय बहुत आवश्यक है, क्यों, क्योंकि जितना अभ्यास ज्यादा होगा उतना बुद्धि की एकाग्रता होगी, और अंत समय में ना जो गायन है अंत मते सो गति का गायन, उसी में गति होगी जब हमारी बुद्धि योग और कहीं ना कहीं जाके न भटके न अटके, वो तब होगा जब अभ्यास ज्यादा होगा। तो इसलिए जीवन में एक ये अभ्यास ये एक बहुत होना चाहिए, और अभ्यास के साथ साथ जो बाबा ने कहा है रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या बनाओ, तन की और मन की दोनों दिनचर्या, तन से यही ये काम करना है और ये सेवा, और मन की दिनचर्या कि मुझे इस कमजोर विचार को बिल्कुल नहीं आने देना, इस मनन चिंतन में रहना है, ये है। तो ये जितना हम करते चलेंगे, और साथ में बाबा ने क्या कहा है कि जीवन के अंदर ना सदा लक्ष्य सामने रखो, लक्ष्य अगर सामने होता है तो वो कार्य सहज हो जाता है। आप सब लोग लौकिक उसके अनुभवी हो ना, घर में कोई प्रसंग होता है, कोई मानो 1 महीने के बाद शादी है, वो डेट भी याद रहती है शादी और उससे संबंधित, या कोई भी प्रसंग होता है क्या क्या तैयारी करनी है वो पूरी याद रहती है, वैसा ही कार्य होता है। तो इस रीति से हमें कौन से बाबा से सर्टिफिकेट लेने हैं, कितने सर्टिफिकेट है, 3 कौन से, 4 कौन से, 4 बोला किसी ने, 3 बोला है, हाँ सबसे पहले बाबा ने कहा भगवान से सर्टिफिकेट, तो भगवान से सर्टिफिकेट किस आधार पे मिलता है, केवल एक बात, तो वो सर्टिफिकेट दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे और लीकेज नहीं होगा। भगवान से सर्टिफिकेट का आधार क्या है, बाबा ने बताया कौन सा स्लोगन, भगवान किस पर राजी होता है, सच्चे दिल पर साहब राजी, जितना हमारे दिल में सच्चाई सफाई होगी ऑटोमेटिकली भगवान से सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, 1। दूसरा परिवार से सर्टिफिकेट, उसके लिए कौन सा वो करना है, एक बात बस, लौकिक दुनिया में भी किसी से कोई सर्टिफिकेट लेना हो या कोई हमें क्या समझता है उसको टेस्ट करना हो, उसके लिए हमारे में कौन सा गुण होना चाहिए, आज दुनिया किस चीज की भूखी है, मान की, सम्मान की, रिगार्ड की, हर एक को रिस्पेक्ट देके अगर चलते चलते हैं, अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पड़ोसी हो, संबंधी हो, कोई भी हो, बस वो खुद ज्ञान में नहीं भी चलेगा तो भी कहेगा हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले जो ज्ञान सुनाते हैं ना बहुत अच्छा है, उसको सुनो, समझो, धारण करो, भले खुद ना भी सुने। तो सबको रिस्पेक्ट देते चले छोटा बड़ा, तो पूरा संसार से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई कैसा भी हो रिस्पेक्ट का तो अधिकारी है। और तीसरा अपने से सर्टिफिकेट, उसके लिए कौन सी बात याद रहे, ये तीनों बातें अगर होती है ना अपने से सर्टिफिकेट लेने के लिए, पहले ये सोचे अपने से हमें सर्टिफिकेट कब नहीं मिलता है, कब अपने को हम धिक्कारते हैं, कब अपने ऊपर घृणा आती है, कब आती है, हैं? हाँ, जब कोई भी मर्यादा का उल्लंघन होता है, ज्ञान है बुद्धि में ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है, जो करना चाहिए वो नहीं, तो क्या है, अपने को जैसे खुद ही मर्यादा का उल्लंघन हो गया, तो अपने को हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। अगर अपने से सर्टिफिकेट लेना है तो देखना है कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन। तो ये खजानों को जमा करने के ये तीन और साधन है, सच्चाई, सफाई, जो बाबा ने कहा ना, जितना हम एक्चुअली सच्चाई सफाई होगी वो ज्ञान को हम उतना समाते जाएंगे, या समाते जाएंगे उतना सच्चाई सफाई आती, दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत। रिस्पेक्ट की भी भावना तब निकलेगी सबके प्रति जब हम दूसरे को आत्मिक रूप में देखेंगे, उसका भौतिक रूप, भौतिक पोजीशन, स्थूल, ये सब चीज ना हमारे उसमें नहीं। इस रीति से एक ये आधार है उसका। और तो बाबा का हमने देखा कि ये सब चीज जो है सब बाबा के पास आते थे, लेकिन बाबा हर बच्चे को ना इतना प्यार से, और जो पहली अनुभूति ही कराता था ना बाबा की, बड़ी विचित्र होती थी। यहाँ चित्र भी आपने देखा ना, गेट के सामने है, तो गेट के सामने आपने देखा है बाबा का ऐसा हाथ फैलाए चित्र है ना। तो बस जब भी कोई आता था पहली बार बच्चे मिलते थे, बाबा दृष्टि दी, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन आओ, ऐसा बाबा के दिल से निकलता था। और जैसे ही बाबा की दृष्टि वो लेता था, कोई भी जो भी के पहली बार भी भले मिल रहा हो, बस वो विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था। और उससे क्या, बस बाबा के भाव में आया, ना देह का भान, पुरुष हूं, स्त्री हूं, युवान हूं, बूढ़ा हूं, कुछ भी कोई भान नहीं, फिर थोड़े समय के लिए विदेही। फिर क्या करते थे बाबा, बाबा उसे, हाँ बच्चे आओ, थोड़ा थपथपा के, और जैसे उसे फिर से कॉन्शियसनेस है, कोई आत्मा जाती नहीं है, विदेही का मतलब देह से न्यारी नहीं, आत्मा तो रहती है, लेकिन जैसे देह की कॉन्शियसनेस वो विड्रॉन हो जाती थी और विदेही। फिर थोड़ी देर में जैसे आए, और वो अनुभव करने के बाद बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था। तो ये अपने को भी हमें देखते चलना है कि हमें भी बाबा की तरह कर्मातीत तो बनना है, खजानों को लीक नहीं होने देना है। और इसके लिए एक ये जो बाबा ने अभ्यास पक्का किया था, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, लिख लिख करके, तो इस कारण से बाबा दूसरे को भी बड़ी सहज रीति से आत्मा की अनुभूति करा देते थे। ये हमें भी अपने को चेक जैसे मानो है, हा? थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को ना शांति का, पवित्रता का, सुख का, शक्ति का, आनंद का, ज्ञान का, जो आत्मा के गुण है उनका अनुभव करा देंगे ना, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत उस अनुभव को नहीं भूल सकता। जैसे ये है रुमाल है, इसको हम अगर ऊपर फेंकें, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक हमने जो शक्ति लगाई है उस वो इसमें है, और जब इसकी शक्ति वो कम हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जिस शक्ति से पृथ्वी नीचे खींचती है, फिर ये अपने आप नीचे आने लगी। ऐसे ही कैसी भी आत्मा हो, विकारी हो, दुनिया में डूबी हुई हो, आती थी बाबा के सम्मुख, बस बाबा अपनी शक्ति से थोड़े समय के लिए तो उसे वो अनुभव करा देता था, और उसके बाद वो आत्मा अपने पुराने संस्कार स्वभाव के कारण फिर से उस देह बांध में आती थी, लेकिन वो अनुभव उसका जीवन पर्यंत के लिए हो जाता था। एक ये बात विशेष बाबा में जो देखी, और जो हम सबको भी धारण करनी है, हमारा भी अगर यही लक्ष्य रहता है तो क्या होगा कि कभी भी लीकेज जो है, वो लीकेज के क्या साधन होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई चीज को देखते हैं, कहीं हमें कोई ठेस लगती है, किसी की अपेक्षा होती है, वो अपेक्षा हमारी फुलफिल नहीं हुई है, कोई ऐसी बात होती है जो कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन नहीं होती है, तो सेटबैक होता है और फिर संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, उससे ये लीकेज हो जाती है। जो शुरू में 8-9 बातें लीकेज के कारण बताए, तो उनके अंदर उनके प्रति सावधान रहना है। और इसमें क्या देखा है बाबा का, देखा ना कि क्योंकि मैं बाबा के रेफरेंस में इसलिए बता रहा हूं कि बाबा ही एक आत्मा है जो अभी तक संपूर्ण रीति से ये बना है, संपूर्ण कर्मादी। बाबा को हम देखते थे कि बाबा जब भी आते थे यहां पर मुरली चलाते थे, अंतिम 2 दिन में हमने क्या देखा बाबा का कि बाबा के सम्मुख जाते थे, पहले जब भी बाबा से मिलते थे 1962 के बाद कई बार मिले, बाबा हालचाल पूछते थे, समाधान करते थे, लेकिन 17 और 18 जनवरी 1969 को जब हमने देखा बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि देते ही बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बस मन का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी हाथ की याद देते थे, और फिर बाबा जैसे अशरीरी हो जाते थे। ऐसा 1-2 बार नहीं, उन 2 दिनों में लगभग 6-7 बार ऐसा हुआ। ये है स्थिति कौन सी, मन जीते जगत जीत की। जिसने अपना मन जीता हुआ होगा वो दूसरे के मन के भावों को भी तुरंत पढ़ लेगा, और पढ़ेगा ही नहीं उसका समाधान भी कर सकेगा। और क्या देखा कि जब आत्मा और निकट होती है, खजाने की भरपूरता होती है, जो आपको पहले ही बताया 33 वर्षों में ही बाबा ने इतना खजाना ये भरपूर कर लिया। कब हो गया 33 वर्षों में, जो आज 80 वर्ष वाले भी नहीं हैं उतने, सभी पुरुषार्थी हैं हम सब, लेकिन क्यों, क्योंकि हम सबका कुछ ना कुछ लीकेज होता रहता है, बाबा ने उस लीकेज को स्टॉपेज कर दिया था। और इस कारण से सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न पहलू होता है मृत्यु का। जिसने जन्म लिया है वो शरीर छोड़ेगा ही, तो बाबा को पहले से ही आभास हो गया था कि बस 17 जनवरी 18 जनवरी को हमने देखा बाबा को, बाबा ने यशोदादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो। एक माउंट आबू नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है वो पेंडिंग पड़ा था, वो फाइल क्लियर करी। बाबा ने उस दिन ना, रोज क्लास होती है मधुबन में, रोज 8:45 बजे 9 बजे से शुरू होती थी रात्रि क्लास, उस दिन बाबा ने 6:30-7 बजे ही बोला, जमुना प्रसाद भाई है बच्चे, सबको बता दो आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब आ जाए। तो बस बाबा 7:15-7:30 तक आ गए, उससे पहले ही सब बच्चे भोजन वगैरह करके आ गए, और उसके बाद बाबा ने भी मुरली चलाई। तो ये पहले से ही इच्छा मृत्यु का ये आभास भी हो जाना, हाँ अब मेरे इस शरीर के सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए, हिसाब किताब चुकतु हो गए, बाबा अब मैं आपके पास आत्मा आई की आई। और जब ऐसा आभास पक्का हो जाता है तो क्या है, फिर अंतमति सो गति पूरी की पूरी सफल रीति से होती है, नहीं तो अंत समय तक भी मन कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं भटकता रहता है। बाबा को नॉर्मल केस में कई बार खांसी आती थी, हा? और हम देखते थे कि खांसी आते आते कई बार बाबा की आंखें गीली भी हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा के पास ट्रांसलाइट का चित्र, अभी भी आप जाओ हिस्ट्री हॉल में रखा है लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का रखा रहता था, और बाबा कहते थे देखो बच्चे आज भले ये पुराना शरीर है, पतित तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर है ये है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, तत्व तो सतो प्रधान होंगे, नया शरीर मिलेगा, कितना कैसी दुनिया होगी। बस उस खुशी की लहर बाबा के चेहरे पर आ जाती थी और वो खांसी कहाँ गई पता भी नहीं चलता था। बाबा अपनी स्वस्थिति से उस खांसी रूपी परिस्थिति पर न संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता था। तो एक खजाने को सेव करने का साधन और बढ़ाने का साधन ये है। परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी हमारे सामने, पेपर जाएंगे, लेकिन वो परिस्थिति हम पर हावी न हो बल्कि हम अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लें जैसे बाबा का दिखता था। कितनी बार कोई भी परिस्थिति आती थी, कितने पेपर आते थे, कई जगह से ऐसे ऐसे समाचार आते थे कोई भी हिल जाए, लेकिन बाबा बिल्कुल स्वस्थिति से उस परिस्थिति को ऐसे पार कर लेता था जैसे वो परिस्थिति कुछ है ही नहीं। यही एक और आवश्यकता है हमें अपने खजानों को सेव करने की। साथ ही साथ ये शरीर जो है ना, ये तो हमारा अंत तक का साथी है, ये शरीर आत्मा है, और बाबा इसके साथ साथ जहां एक तरफ बाबा ने मन जीते जगत जीत की स्थिति प्राप्त की थी, वहां पर हम लोगों को भी बाबा की तरह ना प्रकृति जीत की स्थिति प्राप्त करनी है, क्योंकि ये शरीर जो है ये ही वो जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये अंत तक का हमारा साथी है, पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक का, भले अलग अलग नाम रूप में ये शरीर होगा, लेकिन इसे हमें ये देखना है हम इसे अपनी इच्छा से छोड़ें। अगर हमने भी संसार वालों की तरह छोड़ा, कोई अर्थक्वेक आया, फ्लड हुआ, सुनामी हुई, कोई ऐसे धरती हिली, बहुत ऐसा हुआ, हमने भी छोड़ा, तो हमारे और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा? फिर तो ऐसी वो बात नहीं रहेगी, अंतमते सो गति वाली बात। इसीलिए हमें ये देखना है हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, क्योंकि बाबा ने कहा है, कई बार बाबा ने मुरली में रिपीट कहा करा है, बच्चे ये जो साधन है ना, अभी ये मोबाइल है या वायरलेस के साधन है, ये सब साधन अंत में कोई काम नहीं आएंगे। कौन सा साधन काम आएगा? वॉइसलेस का साधन। ये वायरलेस के हैं, जितना हमारी बुद्धि निर्विकारी होगी वो ही साधन काम में आएंगे। और बाबा, गौर से सुनना, बाबा ने कहा बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए, और बाबा टच करेगा, कोई भी परिस्थिति आएगी बच्चों को टच करेगा और ऑटोमेटिकली बच्चों के पांव उधर उठेंगे जहां सेफ्टी होगी, ऑटोमेटिकली जहां सेफ्टी होगी, और बस सेफ्टी में तुम पार हो जाओगे, बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा। तो एक ये हमें देखना है कि किस प्रकार से हमें उस बात को देखना है कि मेरा कनेक्शन वॉइसलेस कनेक्शन हो, और ये कैसे होगा, प्रकृति पर हम कैसे, क्योंकि ये खजाना सबसे बड़ा खजाना है। तो अभी ये बाबा की तरह ना हमें भी ये देखना है कि हमारा जो है ना ये शरीर भी निर्विघ्न रीति से छूटे, और उसके लिए ये आवश्यक है कि प्रकृति के जो तत्व है ना, ये इन तत्वों के भी को भी हम अपना मित्र बना के उनके साथ व्यवहार करते हुए आगे चले। ये जल है, जल का एक गुण कौन सा है, शीतलता के साथ साथ एडजस्टमेंट का, तो हम भी अपनी नेचर को हर एक के साथ एडजस्ट करते हुए चले। पृथ्वी का कौन सा गुण है? हाँ? सहनशीलता। उससे भी बड़ा गुण है पृथ्वी का, दाता का। पृथ्वी हर एक चीज देती है, हर चीज, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, अनाज है, गेहूं है, चाव, सब चीज पृथ्वी से मिलता है। ऐसे हम भी दाता बन करके ना हर एक को देते चले जो हमारे सम्मुख आए। स्थूल चीज की बात नहीं है, दाता माने प्रेम, शांति, सहयोग, सद्भावना, इनमें तो कोई खर्च नहीं होता। ये देते चलेंगे तो चाहे जितने भी पृथ्वी में अर्थ क्वेक आएंगे, चाहे जल अपनी जितनी भी सीमाएं तोड़ेगा, लेकिन सही समय पर हमें बाबा की तरफ से टचिंग होगी, हम उस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। ऐसे ही वायु की तरह सदा हल्के रहे, सूर्य की तरह, सूर्य में क्या शक्ति होती है, अग्नि में हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है। तो बाबा ने कहा हमारा भी ऐसा ज्वालामुखी योग स्वरूप हो कि रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति का अनुभव, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। एक ये है अग्नि का गुण धारण कर लें, और अंत में आकाश का गुण। कौन सा गुण है आकाश का? विशालता का। जितने हमारे हृदय में भी इतनी विशालता हो कि किसी की कमी कमजोरी उसको हम कोई भी स्थान न दें, और मतलब स्वतः ऑटोमेटिकली उसके प्रति हमारी जैसे क्षमा की भावना, माफी की भावना। तो इनके साथ जितना जितना इन तत्वों के ये गुण हम धारण करते जाएंगे ना, तो बाबा का तो हमने देखा, बाबा ने शरीर छोड़ा था 18 जनवरी को रात को, और 21 जनवरी को उनका संस्कार किया, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है उस शरीर के अंदर कहीं भी काफी हद तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, अकड़न नहीं थी जो कि नॉर्मल केस में होती है। बहुत डॉक्टरों से हमने पूछा, कईयों से, लेकिन ये देखा क्यों? क्योंकि बाबा ही एक ऐसा प्रकृति जीत बना हुआ था जिसने की प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त। तो आइए आज हम सब भी ये संकल्प लें कि बाबा आप जो हम बच्चों से आशा करते हो कि भाई बच्चे भी मेरे समान ही ऐसे मन जीते, प्रकृति जीते, ये बने, विजय माला का मेरे गले का हार बने, तो हम सब भी बाबा आपको ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब भी ऐसा ही पुरुषार्थ करके आपके दिल की इच्छा को पूर्ण करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत सभी की तरफ से धन्यवाद है। ओम शांति।